समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मौसम बदल गया है, मॉनसून देश के कई भागों में पहुंच गया है और शहर शहर गांव गांव में अब गर्मी की जगह सुबह की ठंडी बयार बहने लगी है। श्रोताओं, इन सुहावनी हवाओं के बीच हम भी रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुंच रहे हैं आप तक कार्यक्रम आज सवेरे लेकर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर इस न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे के आज के अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार देवेंद्र। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, देवेंद्र हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock we are here with a lot of information for all of you, be it national or international news, metro city updates, as well as some historical information related to this particular day, that is 29th of June 2024. And happy monsoon to all our lovely listeners. Along with that, I just want to wish happy Saturday as well. Well, Saturday is like a day where you can do nothing and maybe call it a self-care day. So, devote it for yourself. So, let me ask you, Devendra, if a Saturday for you is at home, there's no work at all, then what would you do?
जी, पसंद की चीजें करने का मौका होता है जब आप छुट्टी पर होते हैं। उस दिन आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, योगा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे, वो सब कुछ कर सकते हैं और पसंद का गाना सुन सकते हैं, पसंद की चीजें खा सकते हैं और कहीं घूमने जा सकते हैं।
एब्सोल्युटली एंजॉय योर डे। दिस इज सैटरडे, इट्स लाइक अ फिलिंग इन द सैंडविच कॉल्ड वीकेंड, सो स्टफ इट विद द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। लेट्स बिगिन आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम विद द हेडलाइंस, शैल वी?
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।
द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज अनाउंस्ड फ्रेश डेट्स फॉर कैंसल्ड एंड पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशंस। इन अ नोटिफिकेशन इश्यूड यस्टरडे, द NTA सेड द UGC नेट जून 2024 एग्जामिनेशन विल नाउ बी हेल्ड बिटवीन 21st of August एंड 4th of September। The University Grants Commission National Eligibility Test UGC NET was cancelled a day after being conducted on 18th of this month as the Education Ministry received inputs that the integrity of the exam was compromised. The UGC NET is a test to determine the eligibility of the award of Junior Research Fellowship for appointment of assistant professors and admission to PhD courses. Joint CSIR UGC NET June 2024 examination, which was postponed as a primitive measure, will now be held from 25th to 27th of July. The Council for Scientific and Industrial Research, CSIR UGC NET, is accepted for PhD admissions in Chemical Sciences, Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences and Physical Sciences. The National Common Entrance Test for admission to the four-year Integrated Teacher Education Program, which was also postponed, will now be conducted on 10th of July. The NTA said that the All India Ayush Postgraduate Entrance Test 2024 will be held as per its actual schedule on 6th of next month. The NTA has advised the candidates to visit its official website www.nta.ac.in for further information.
दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल एक का एक हिस्सा गिरने के कारण इसके अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर सरकार ने एयरलाइन कंपनियों के लिए यात्री किराए में बढ़ोतरी न करने संबंधी एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि किरायों में स्थिरता बनाए रखें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और चार अन्य घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नायडू ने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की जिसमें मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यात्री सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मौजूदा चुनौतियों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने और हवाई अड्डों के समग्र सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नागर विमानन मंत्रालय की कड़ी निगरानी में 24 घंटे चलने वाला वॉर रूम स्थापित किया जाएगा। वॉर रूम उड़ानों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करेगा या आवश्यकता के उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक यात्रा मार्ग के लिए टिकट भी प्रदान करेगा। सभी रिफंड 7 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इंजीनियरों को टर्मिनल एक पर हुई घटना का तुरंत आकलन करने के लिए कहा गया है। आगे की जांच का निर्णय उनके प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर किया जाएगा। बैठक के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सभी छोटे और बड़े हवाई अड्डों के भवनों का गहन निरीक्षण करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। अगले 2 से 5 दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा करने और रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
The government has amended the Employees Pension Scheme, EPS, to ensure that EPS members with less than 6 months of contributory service also receive withdrawal benefit. This amendment will benefit more than 7 lakh EPS members every year who leave the scheme with less than 6 months of contributory service. The central government has modified the Table D and has ensured that every completed month of service rendered is taken into account to give proportionate withdrawal benefit to the members. The amount of withdrawal benefit will depend upon the number of completed months of service rendered by the member and the wages on which EPS contribution was received. Labour Ministry said that the measure has rationalised the payment of withdrawal benefit to the members. More than 30 lakh withdrawal benefit claims were settled in 2023-24. Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday assured the NEET students that strict action will be taken against the culprits. Talking to newspapers outside Parliament, he said that government is sensitive over this issue and assured the students and guardians that all necessary actions would be taken. He mentioned that the government is ready to discuss any issues in the House.
52 दिनों तक चलने वाली वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालताल मार्ग से शुरू होगी। ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। श्रीलंका में ऑनलाइन वित्तीय घोटाले में कथित संलिप्तता के मामले में 137 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंकाई अखबार डेली मिरर के मुताबिक भारतीय नागरिकों को गुरुवार को कोलंबो के उपनगरीय इलाके मदीवेला और बट्टारा मुल्ला और पश्चिमी तटीय शहर नेगोम्बो से गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रवक्ता एसएसपी निहाल थलदुआ ने कहा कि आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने एक साथ छापेमारी की जिससे 158 मोबाइल फोन, 16 लैपटॉप और 60 डेस्कटॉप कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई एक पीड़ित की शिकायत के बाद की गई है जिसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए नकद देने का लालच दिया गया था।
In Iran, voting for the 14th presidential election ended around midnight yesterday. The voting was initially scheduled to end in the evening but was extended 3 times with each extension lasting for 2 hours. Talking to Iran's state-run channel, spokesman of country's election headquarters, Mohsen Islami, said those people who had come before the end of the voting process and were waiting for their turns, they were allowed to cast their ballots. 4 candidates are in the fray for the top position of the country's executive branch. And the 14th presidential election in this country, Iran, initially set for 2025, was rescheduled following the death of President Ebrahim Raisi and his entourage in the helicopter crash on 19th of May.
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में योग को शामिल करने के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ पीटी ऊषा के कदम का स्वागत किया है। पीटी ऊषा ने एशियाई खेलों में योग को खेल के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को पत्र लिखा है।
In women's cricket, India will resume their play at the overnight score of 525/4 against South Africa in the first inning on day two of the one-off test match in Chennai this morning. On day one, opting to bat first, Shefali Verma and Smriti Mandhana displayed masterful batting, putting on the highest ever opening partnership of 292 runs in women's test cricket. This puts India in a commanding position with imposing 525 for the loss of four wickets at stumps. Shefali also scripted history by scoring the fastest double ton in test cricket with 205 runs off 197 balls. Smriti Mandhana made 149 runs off 161 deliveries. The women in blue also broke an 89-year-old record for the most runs scored on a single day in women's tests. The previous record was set by England women, who had scored 431/2 against New Zealand in Christchurch way back in 1935.
और T20 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पिछली विजेता इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को पराजित किया। दोनों टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रतियोगिता में अब तक अजेय बनी हुई हैं। ये मैच भारत के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच होगा।
एनसीआरबी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। This app is a compilation of new criminal laws, namely Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Bharatiya Saksha Adhiniyam. It is available on Google Play Store as well as Apple App Store. This app is useful for general public, court officers, advocates, law students as well as for police officers in enhancing their knowledge about the new criminal laws. This app serves as a comprehensive guide, providing complete information about the new criminal laws at one place. It provides an index linking all chapters and sections of the new laws and a corresponding chart for section-wise comparison between old and new laws, with a search and linking facility for quick information retrieval. The app is designed to work in offline mode also, in absence of connectivity. With its user-friendly design, comprehensive content and innovative features, the app empowers users to learn the new laws effectively.
News Magazine program आज सवेरे में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब आगे बढ़ते हैं और महानगरों का समाचार जानते हैं। तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की क्या खबरें हैं तन्वी आपके पास?
लेट्स बिगिन विद चेन्नई। तमिलनाडु असेंबली पास रेजोल्यूशन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एंड अलाउ इट टू एडमिट स्टूडेंट्स टू मेडिकल कॉलेजेस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स एज इट हैड बीन डन बिफोर नीट केम इनटू इफेक्ट। Chief Minister M.K. Stalin moved the resolution that NEET has to be abolished and wanted the state government to allow students to admit students to medical courses based on the marks in the 12th class examination. Citing the resolution, Stalin also wrote a letter to the Prime Minister to regard exemption in NEET exam in Tamil Nadu. Some more news from Chennai. The Tamil Nadu government has decided to restructure various agencies under the Information Technology and Digital Services Department. The agencies include ELCOT, ELCOT and TNEGA, that is TNEGA. State Minister for Information and Technology, PTR Palanivel Thiagarajan, in his reply to the Assembly said that these agencies would be brought under Section 8 of the Companies Act to maintain transparency and responsibility. The department said it would provide high-bandwidth internet for public health centres, government colleges and other institutions in remote locations, benefiting 30,000 individuals through Tamil Nadu FiberNet Corporation in 2023-24. And now if we talk about Bengaluru, Brihat Bengaluru Mahanagar Palika Chief Commissioner Tushar Girinath has informed that integrated micro plan will be worked out to control the spread of dengue in Bengaluru. The objective of the plan is to clear mosquitoes from the city. Another objective is to visit door to door and educate the public about keeping their premises dry so that these mosquitoes do not breed in stagnant water, in water sump, drum, flower pots and around the taps. The loudspeakers, figs and auto rickshaws are moving around the city with messages educating the people. The objective to destroy larvae. A portal named Prism Itch is created to upload door-to-door survey details and initiate suitable action. And if we talk about Hyderabad in Telangana, at least 5 persons were died and 14 others were injured after a gas compressor exploded at South Glass Private Limited in Shadnagar in Rangareddy district last evening. Yesterday evening, the injured workers have been shifted to nearby hospitals for treatment. The deceased have been identified from states of Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. District Collector Shashank reached the site of incident and expressed shock over the scene. As per initial reports, the safety valve did not automatically open, causing the blast. Chief Minister Revanath Reddy expressed shock over the accident and directed the officials for relief activities in a coordinated manner among the concerned departments. Expressing shock over the incident, VRS Working President K.T. Ramarao appealed to the state government to immediately conduct a thorough safety audit and review disaster management plans in all industrial areas to prevent such incidents in the future. So these were the updates from three cities, Hyderabad, Bengaluru and Chennai. So let's go to Devendra and ask about Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी तन्मय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के भागों में कल हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली लेकिन जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। दिल्ली में सड़कों, गलियों और नेताओं की सरकारी आवासों तक में पानी भर गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में वर्षा के मद्देनजर जलभराव, नालियों में जलभराव और बंद सीवर लाइनों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली सरकार की सभी संबंधित विभागों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपातकालीन स्थिति की भी समीक्षा की। उधर दिल्ली सरकार ने भी स्थिति से निपटने के लिए कल आपात बैठक की। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में 24 घंटे काम करने वाले एक आपात नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया जा रहा है। बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने भाग लिया। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी विभागों से अपने अपने पंपों की जांच कराने और कुछ खामी मिलने पर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। श्री भारद्वाज ने कहा कि सभी विभाग त्वरित कार्रवाई दल बनाएंगे। मुख्य सचिवों से दिल्ली के उन इलाकों की सूची की समीक्षा करने को कहा गया है जहां अधिक जलभराव की संभावना है। उन्होंने बताया कि पानी की निकासी के लिए दिल्ली जल बोर्ड से 11 जोनों में रिसाइक्लर मशीन का उपयोग करने और सीवर की सफाई के लिए अनुबंधित श्रमिकों को लगाने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजधानी में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डीएमए विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाने का फैसला किया है। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव आईएमए पूर्वी दिल्ली शाखा के सहयोग से 30 जून को हेल्थ वॉक के साथ शुरू होगा। डॉक्टर वीक का समापन 7 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरोग्यम 2024 एक पूरे दिन के वैज्ञानिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित डॉक्टरों के सम्मान के साथ होगा। आईएमए ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि डॉक्टर वीक में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के नारे से प्रेरित मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय पर हेल्थ वॉक, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और बड़े पैमाने पर समाज के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बकाया संपत्ति कर इस महीने की 30 तारीख से पहले एक साथ जमा कराने पर 10% की छूट मिलेगी। संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर भुगतान की सुविधा के लिए निगम के कर संबंधी कार्यालय शनिवार और रविवार यानी आज और कल खुले रहेंगे। सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट mcgonline.nic.in पर लॉग ऑन करके अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। और महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान चालू वित्त वर्ष के लिए कल अनुपूरक बजट पेश किया। इस अवसर पर श्री पवार ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण को ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए 46,000 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। राज्य की 2.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। श्री पवार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत हर परिवार को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली रियायत योजना की भी घोषणा की गई है। सरकार ने सभी पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला ले चुकी लड़कियों की शिक्षा फीस और परीक्षा शुल्क को पूरी तरह वापस देने का भी निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये बजट सही मायनों में महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने वाला है और 1,00,000 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को शामिल करके उन्हें सम्मान देता है। उन्होंने कहा कि ये बजट क्रांतिकारी है जो कमजोर वर्गों, किसानों और युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि यह राज्य के इतिहास का पहला बजट है जिसमें कृषि, सिंचाई, सामाजिक न्याय और आवास के लिए विभागवार धन का प्रावधान नहीं है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के बजट को आश्वासनों की झड़ी और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने का दिखावा करने वाला झूठा आख्यान बताया है। कोलकाता का रुख करें तो यहां प्रेस सूचना ब्यूरो कोलकाता ने शुक्रवार को प्रेस क्लब कोलकाता टेंट में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन भाषण श्री शंभुनाथ चौधरी एडीजी पीआईबी द्वारा दिया गया था। कार्यशाला में विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकार एवं रिपोर्टर उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फैसल फसीह ने 3 कानूनों पर अपना व्याख्यान दिया और केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान के श्री शिवदास सिकदर भी 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डालने के लिए इस कार्यशाला में उपस्थित थे। आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रमुख महानगरों के मौसम की। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। मॉनसून आ गया है तो बादल भी आते जाते रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश आज भी हो सकती है। बारिश होने और बादल छाने के कारण अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मायानगरी मुंबई में भी मॉनसूनी बादल मंडराते रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना भी है। सुबह तापमान 25 डिग्री रहा, दिन में पारा 33 डिग्री तक जा सकता है और कोलकाता में भी घने बादल छाने और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 30 और 25 डिग्री के बीच रहेगा। और तन्वी, शेष महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है?
सो नाउ दैट दिल्ली हैज वेलकम्ड मॉनसून विद more than expected rainfall, Chennai, Bengaluru and Hyderabad are also enjoying monsoon. They are expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature for Chennai was 28 degrees and maximum will be around 37 degrees. If we talk about Bengaluru, the minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 30 degrees. And for Hyderabad, the temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज ही के दिन वर्ष 1613 में शेक्सपियर का लंदन स्थित ग्लोब थिएटर आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गया था।
In 1757, Mir Zafar was crowned as the Nawab of Bengal, Bihar and Odisha of Murshidabad.
जी, और 1888 में आज ही के दिन अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई थी।
In 1927, the first trans-Pacific airplane flight was completed as U.S. Army Air Corps Lieutenant Lester G. Maitland and Lieutenant Albert F. Hagenberger arrived at Wheeler Field in Hawaii aboard the Bird of Paradise, an Atlantic Fokker C-2, after flying 2,400 miles from Oakland, California, in 25 hours 50 minutes.
सोवियत संघ और चीन ने एक दूसरे पर हमला न करने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष था 1932 का। और वर्ष 1974 में सेशल्स द्वीप समूह को स्वतंत्रता आज ही के दिन मिली थी।
इन 1997 इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद वन द फ्रैंकफर्ट चेस क्लासिक टाइटल इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी।
जी, और 2005 में भारत और अमेरिका ने पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय समग्र समझौते पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए थे।
And two important things happened in the year 2007. First was Apple's first iPhone was launched, and the second was Sachin Tendulkar completed 15,000 runs in his ODI career. He crossed the 15,000 run mark while playing against South Africa in Belfast on this particular day in 2007, and he became the first batsman in the history of cricket to register 15,000 ODI runs.
Ji. वर्ष 2013 में कैलिफोर्निया ने समलैंगिक विवाह पर लगी रोक को हटा दिया था। और आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री को, जिनकी आज जयंती है। देवकी नंदन खत्री की कई रचनाएं अपने दौर की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें शामिल हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, नरेन्द्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेन्द्र वीर, गुप्त गोंडा और कटोरा भर तथा भूतनाथ। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बड़ा योगदान माना जाता है। इस उपन्यास ने दुनिया भर में पाठकों का मन मोह लिया था। इस किताब की लोकप्रियता इस कदर थी कि इसे पढ़ने के लिए अनेकों गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा सीखी थी। देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्म, अयार और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। और आप जानते ही हैं, चंद्रकांता उपन्यास पर ही आधारित था वो धारावाहिक, जिसका नाम भी चंद्रकांता ही था, और इसे दूरदर्शन पर 1994 से 1996 के बीच प्रसारित किया गया। ये उस समय के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धारावाहिकों में से एक था। सप्ताह में एक बार रविवार को इसका प्रसारण होता था और दर्शक पूरे हफ्ते इसका बेसब्री से इंतजार करते थे।
Today is the death anniversary of Rose Clooney, an American singer and actress. She has done so many pop numbers, be it Tenderly, Half As Much, Hey There, Sway, and many more. She had success as a jazz vocalist. Her career languished in 1960s. She continued recording until her death in 2002, and she received the Grammy Lifetime Achievement Award in 2002 itself. So let's hear a song of hers, and that is Mambo Italiano.
The native dances and the charming songs, but wait a minute, something's wrong.
Hey, Mambo, Mambo Italiano.
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की आज जयंती है। महालनोबिस को स्वतंत्र भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मसौदे को तैयार करने और विशेष रूप से उस समय जिस तरह का दौर था उसमें औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो योजनाएं बनाई उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। और इसीलिए उनके जन्म दिवस को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
And today is the birth anniversary of another Indian nuclear physicist, and he is P.K. Iyengar. He is widely known for his central role in the development of the nuclear program of India. He previously served as the director of BARC and former chairman of Atomic Energy Commission of India, and he raised his voice and opposition against the nuclear agreement that was between India and the United States and expressed that the deal favored the United States. And he is a Padma Bhushan awardee. He got the award in 1975. Today is also the death anniversary of Katharine Hepburn, an American actress whose career as a Hollywood leading lady spanned six decades. She was known for her headstrong independence, spirited personality and outspokenness. So we have a dialogue from her movie, The Philadelphia Story. Let's just hear it out.
You're the worst kind there is, an intellectual snob. You made up your mind awfully young, it seems to me.
Well, 30's about time to make up your mind. And I'm nothing of the sort, not Mr. Connor.
The time to make up your mind about people.
भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार केजी सुब्रमण्यम की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में से एक माना जाता है। सुब्रमण्यम जी को कई तरह के खिलौने भी बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें उनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए तीनों नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण शामिल है। और अब समय हो रहा है कि हम अपने श्रोताओं से ले आज सवेरे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।
So let me just give credit to the entire team. The editor was Aishwarya Rai Nigam. The anchors, you know, Tanvi Khurana and Devendra Tripathi. The steno was Sumit Karmakar. And the production assistance has been given by K.P. Singh. So stay tuned for coming up next is our Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
Namaskar.